हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण बिंबफलाधरोष्ठात् पुण्यसुंदरमुखा अरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुवन्ति देव्यस्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति चिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशास्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण Krishna Krishna Hari Hari, Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hari Hari. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीसरा अध्याय पहला सिकंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 7। कृपया इन पवित्र परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत्त गोस्वामी आज भगवान के दूसरे अवतार की सूची प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं कि भगवान ने कल हमने प्रथम पढ़ा था ना, उसमें क्या बताया था, स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितं। तो पहले पहले कौन थे, कौमार यानी चार कुमार कुमारगण। तो आज दूसरे के विषय में बता रहे कि दूसरा अवतार भगवान का कौन सा था। श्लोक पढ़ते हैं, द्वितीयं तु भावायस्य रसातलगतामहि उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञेश सौकरं वपु। द्वितीयं तु भवायस्य 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 रसातलगतामहि उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञेश सौकरं वपु। शब्दों का अर्थ देखिए, द्वितीयं अर्थात दूसरा, तु यानी लेकिन, यानी पहला तो संत कुमार ये चार कुमार के थे और लेकिन दूसरा कौन सा था और उन्होंने क्यों लिया था अवतार, यहाँ पर पहले बताया भवायस्य। भवाय मतलब कल्याण करने के लिए, अस्य यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी के, अस्य मतलब इसके। क्यों पृथ्वी के विषय में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रसातल गताम महिम, रसातल मतलब रसातल जो बहुत ही निम्न भाग है, जितने 14 लोग हैं उसमें बहुत ही निम्न भाग है रसातल, और वहां पर निम्नतम भागों में गताम यानी गई हुई थी, महिम यानी पृथ्वी, और उद्धरिष्यन उठाकर उपादत्त स्थापित किया। वहां पर पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने रसातल में भेज दिया था और भगवान ने दूसरा रूप धारण किया और पृथ्वी को वहां से उठाकर स्थापित किया ऊपर। और आगे कहते हैं उपादत्त मतलब स्थापित किया यज्ञेश यानी स्वामी या परम भोक्ता। अब यहाँ पर भगवान का पहले बताया कि ये दूसरा रूप है जिसने क्या किया, रास्ता तल में से पृथ्वी को उठा के ऊपर स्थापित किया, और वो हैं कौन से भगवान, यज्ञेशः, यानी वो भगवान जो स्वामी या परम भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तथा। तो ऐसे भगवान ने कौन सा रूप धारण किया वो लास्ट में बता रहे हैं, सौकरम वपु। सौकरम वपु यानी सूकर का, अर्थात सुअर का, वपु मन अवतार। अनुवाद देखेंगे, समस्त यज्ञों के भोक्ता ने सोकर अवतार यानी द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल से ऊपर उठाया। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। यानी कि भगवान जब जब अवतार लेते, ऐसा नहीं है कि बस भगवान ने अवतार ले लिया कोई उसका मकसद ना हो, जरूर कोई ना कोई विशेष कारण होता है जिसकी जिसके लिए भगवान, जैसे अब भगवान ने सूकर अवतार लिया, तो सूकर अवतार लेने की कौन सी वजह है कि भगवान को ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि भगवान को सूकर रूप लेना पड़ा। ये सूकर रूप अगर देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से कितना निम्न योनि लगती है ना, लेकिन भगवान ने इस स्वरूप को स्वीकार किया है तो श्री प्रभुपाद जी बोलते उसका कोई ना कोई कारण होता है। और आगे बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि बिना कार्य विशेष के कोई भी अवतार नहीं हो सकता है और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय होता है यानी कि ऐसा काम जो और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा कार्य जिसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है, भगवान की शक्ति से भी हो सकता है लेकिन भगवान भी स्वयं आ रहे हैं वो स्वरूप धारण करके, उसके भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जरूर कोई वजह होती है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव है। कोई मनुष्य जो है दूसरा जीव, मतलब कोई भी दूसरा जीव, अब मनुष्य है या फिर पशु है या पक्षी है, ऐसा कार्य जो केवल भगवान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, वो कार्य करने के लिए ही भगवान इस संसार में आते हैं। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। अब रसातल एक ऐसी गंदी जगह होती है जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश होता है ना, इसके नीचे जितने लोग हैं वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं होता है। और क्योंकि शुद्धता क्यों होती है पृथ्वी पर, शुद्ध कैसे होता है, सूर्य प्रकाश से शुद्धता होती है, वायु से शुद्धता होती है, लेकिन नीचे वाले जितने लोग हैं ना वहां पर ये नहीं है, तो फिर वो इतने गंदे स्थान हो जाते हैं, बिल्कुल निम्न, इसलिए निम्न भाग कहा गया ना इसको, तो ये बहुत ही ज्यादा गंदी जगह है। और गंदी जगह से कोई अगर चीज उठानी होती है तो सुअर का काम है ना वो, तो इसके लिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे कार्य का किसी भी जीव के द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना सूकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी के ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। अब क्योंकि असुरों ने अर्थात हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को बहुत गंदी जगह पर जाके छिपा दिया था, तो उसे ऐसा लगा कि इतनी गंदी जगह पे कौन आके इसको लेगा, वहां से तो कोई लेगा नहीं। अब वो तो असुर था, वो तो कोई असुर को तो गंदे और अच्छे का है ही नहीं, लेकिन उसको खबर है कि यहाँ पर कोई गंदी जगह पर आएगा नहीं लेने के लिए। लेकिन भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और कोई भी स्वरूप धारण कर सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि असुरों को भगवान ने ऐसा करके दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने सूकर की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित है। बलि उन्होंने स्वीकार किया है सूकर का स्वरूप। हालांकि भौतिक दृष्टि से वो खराब माना जाता है, लेकिन फिर भी भगवान सनातन है, भगवान हर स्वरूप में पूज्य है। इसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित है। भक्त ये नहीं देखता कि भगवान किस स्वरूप में आए हैं, भक्त ये देखता है कि मेरे भगवान आए हैं, फिर वो कुछ भी बनकर आए तो भक्त जो है वो उनकी पूजा करता है, उनको उनका आदर करता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। आज सुत गोस्वामी भगवान के द्वितीय अवतार के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं द्वितीयम तु भवायस्य, कि दूसरा जो है अवतार वो कल्याण के लिए आया। तब यह प्रश्न उठता है कि वो किसके कल्याण के लिए आया? पृथ्वी के लिए कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए अगर ऐसा सोचा जाए तो पृथ्वी जो है वो तो वास्तव में कौन है जानते हो? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये भगवान विष्णु की पत्नी है। तो भगवान विष्णु की पत्नी है तो उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है ना। उसके लिए बखान करने की जरूरत नहीं है, पत्नी की रक्षा करना तो पति का कर्तव्य होता है। तो फिर किसकी रक्षा करने के लिए आया? क्योंकि पृथ्वी जब संसार रसातल में चली गई थी तो ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए कि अब पृथ्वी अंदर है तो मतलब जितने भी ब्राह्मण होंगे, जितने भी लोग होंगे, जितने भी जीव हैं, वो समस्त जीव रसातल में है। अब सारे जीव रसातल में है मतलब ब्रह्मा जी की सारी संतानें, अब जितने भी जीव है वो अगर देखा जाए तो एक तरह से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं, तो ब्रह्मा जी की। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि पृथ्वी को उठा के वापस कोई आप उपाय करो कि पृथ्वी वापस ऊपर आए। तो क्या ब्रह्मा के कल्याण के लिए? लेकिन ब्रह्मा ने भगवान को पता है क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा की ड्यूटी थी कि आपको सृजन करना। अब ब्रह्मा जी ने जाके बोल दिया कि भाई पृथ्वी नहीं है, रिपोर्ट दे दिखा दी, पृथ्वी नहीं है तो मैं सृजन कहाँ पर करूँ? अब सृजन करने के लिए जगह नहीं है। तो और भी ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है आज के दिन छुट्टी, जब तक भगवान लेकर आते हैं तो तब तक तो मुझे कोई कार्य ही नहीं, अब पृथ्वी नहीं है तो मैं सृजन कहाँ पर करूंगा। तो फिर इनके ब्रह्मा जी को नीड नहीं थी इसकी, करके लेकर आए तो लेकर आए, नहीं लेकर आए तो नहीं लेकर आए। लेकिन यहाँ पर फिर भी शब्द लिखा है भवा, भवा मतलब कल्याण के लिए। तो कुछ कहेंगे कि भाई पृथ्वी के अंदर जो जीव बैठे हुए हैं, क्योंकि अब वो रसातल में है तो गंदी जगह पर है, वो तो तड़प रहे होंगे, तो भगवान क्योंकि बहुत करुणामयी है तो उनकी उनको शांत करने के लिए या उनको वापस से सही जगह पर लाने के लिए भगवान ने उन पर कृपा करके यह इसलिए लिखा हुआ है कल्याण। लेकिन भगवान ने साफ साफ कह दिया श्रीमद् भगवद गीता में, बता दिया कृष्ण ने 4.8 में कि मैं किसका कल्याण चाहता हूँ, भले सब मेरी संतान है लेकिन जब मैं संसार में अवतार लेता हूँ तो केवल और केवल परित्राणाय साधुनाम, मैं सिर्फ अपने भक्तों के कल्याण के लिए आता हूँ, अपने भक्तों के उद्धार के लिए आता हूँ, साधु जनों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। और फिर वैसे तो भगवान का यही मुख्य कारण है कि वो भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन विनाश आए तो दुष्कृता, क्योंकि दुष्ट वो होते हैं जो सदैव भक्तों को कष्ट देते रहते हैं। तो फिर अब भक्तों का कल्याण करना है तो मेन पर्पज क्या है? भक्तों का कल्याण। अब भक्तों के कल्याण के लिए भले किसी का भी वध करना पड़ता है तो भगवान भी इसे नहीं हटते। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है भवा यानी कल्याण के लिए, अर्थात भगवान आते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। तो भक्तों को क्या कष्ट था आगे बताते हैं, रसातलम गताम, क्योंकि पृथ्वी जो है वो रसातल में, अच्छा रसातल में पृथ्वी कैसे गई थी? जो राक्षस हिरण्याक्ष था ना, उसने क्या सोचा कि क्योंकि पृथ्वी पर जो भगवान के भक्त है ना वो सदैव भगवान की पूजा करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, होम इत्यादि करते रहते हैं, तो ये पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी पर है ना तो कर रहे। अब पृथ्वी को ही डिबो दूंगा तो फिर उनको ये स्थान नहीं मिलेगा ना जहाँ पर वो बैठ के, अब वो पवित्र जगह होगी नहीं तो वहां पर बैठ के भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को ही अंदर डाल दिया कि ना ये ब्राह्मण लोग यहाँ पर यज्ञ करेंगे ना ही भक्त लोग तपस्या करेंगे, पृथ्वी को ही मैं अंदर जाके डाल देता हूँ। तो सब लोग, जैसे सब लोग को उसने अंदर डाल दिया, अब सब लोग कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगे, पवित्र कार्य नहीं कर सकेंगे। भगवान असुर लोग होते हैं ना वो सदैव भगवान और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं और उनको संकट पहुंचाने के लिए सदैव यत्न करते। तो हमें आज भी देखना चाहिए जो भी भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है तो भगवान उनका सर्वनाश करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं। भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान ने कह दिया अर्जुन को, हे पार्थ निश्चय पूर्वक घोषणा कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होने दूंगा। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता। फिर मेरे भक्त को यदि किसी ने कष्ट पहुंचाया तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जरूर कष्ट पहुंचाऊंगा। परंतु भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपावान है, बहुत ज्यादा दयावान है। वे कहते हैं भगवान भले ये मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं परंतु ये मूर्ख है, इन्हें नहीं खबर आपके बारे में, आप कृपा करके इनको क्षमा कर दो, ये जानते नहीं ना आपके विषय में इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, परंतु आप इनको कष्ट मत पहुंचाओ बल्कि इनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दो। वास्तविक भक्त वो है जो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ देखो मैं भगवान का भक्त हूँ तो अभी मैं आप मुझे कष्ट पहुंचाओगे मैं भगवान को ऐसी प्रार्थना करूंगा तो मैं छुट्टी कर देगा, और भगवान को भी ऐसे करते भगवान दिखाओ इसको, दिखाओ अपना शक्ति दिखाओ कि जो मेरे मैं भक्त हूँ ना आपका, जो मुझे कष्ट पहुंचाएगा तो देखो उसके साथ क्या सुलूक होता है। लेकिन वास्तविक भक्त ऐसे नहीं करते। जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए और इतना मारा गया फिर भी हरिदास ठाकुर बार बार भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप इन्हें क्षमा कर दो, आप इन पर कोई भी अत्याचार मत करना, इनको सद्बुद्धि दो, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें पता नहीं है आपके विषय में। तो अब भगवान भी विवश हो जाते हैं, वो चाहते इस बताते चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कि जब वो तुम्हें कोड़े मार रहे थे तो मैं आ रहा था तुमको बचाने के लिए और उनका सर्वनाश करने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनको कुछ भी मत करना, इनको कोई आंच मत आने देना, इनको क्षमा कर दो, तो फिर मैं विवश हो गया। लेकिन मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। तो भले उस समय मैं उनको नहीं मार सकता था लेकिन तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य था। फिर मैंने एक उक्ति सोची कि चलो ठीक है मैं उनको नहीं मार सकता हूँ लेकिन तुम्हें तो कोड़ों से बचाना है तो मैं स्वयं भी तुम्हारी पीठ पर जैसे आवरण बन गया और मैं आपको जो भी लग रहा था वो डायरेक्ट से मेरे शरीर पर लग रहा था, मैं तुम पर कभी भी आंच नहीं आने देता क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। तो फिर महाप्रभु ने दिखा है हरिदास को कि देखो हरिदास ये रहे वो सारे निशान जो कोड़े तुम पर पड़ रहे थे, वास्तव में वो मैं अपने शरीर पर ले रहा था। तो भगवान जो है वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं परंतु भक्त कभी ये नहीं चाहता कि वो किसी उसकी कारण किसी का भी अहित हो या हानि हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि पृथ्वी को रसातल में डाल दिया था हिरण्याक्ष ने तो वहां पर सारे भक्त परेशान थे लेकिन भगवान अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता। इसी भगवान ने क्या किया यज्ञेश, यहाँ पर भगवान को यज्ञेश का नाम दिया गया। यज्ञेश का मतलब होता है समस्त यज्ञों के भोक्ता। भगवद गीता में 9.25 में बताया जाता है भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम, कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों तपस्याओं के भोक्ता हैं। तो वो इतने महान हैं, इतने पवित्र हैं कि यदि वो कोई भी कार्य करते हैं तो उससे उन्हें वो अपवित्र नहीं कर सकता। वो चाहे कोई भी शरीर धारण करते हैं, वपु का मतलब होता है अवतार, या वो शरीर, कौन सा शरीर? सौकर्म। सौकर्म का मतलब होता है सुअर, सुकर का। तो भगवान, वैसे तो भगवान का दिव्य शरीर होता है, भगवान का वास्तविक शरीर दिव्य होता है, लेकिन भगवान जो दूसरा शरीर ग्रहण करते ना, वो भी कोई साधारण शरीर नहीं होता। ऐसा नहीं कि जिस तरह दूसरे सुअर होते हैं गंदे होते हैं, काले होते हैं, या फिर गंदगी से भरे हुए होते हैं, ऐसा शरीर नहीं होता है भगवान का। भगवान अभी भी सुअर रूप में भी सुकर वपु यज्ञेश, यानी कि वो इस सुकर रूप में भी वो यज्ञेश हैं, वो परम पवित्र हैं, उनकी पवित्रता कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो इटर्नल सत्य हैं, सत्य चित आनंद। भगवान अपने आप में आनंदित हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ और कार्य करके फिर, क्योंकि जो दूसरे भौतिक शरीर है ना, जितने भी शरीर है, आपको चाहिए हाईएस्ट शरीर भी मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा आनंद प्राप्त करने के लिए, है ना। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, आप अकेले कभी भी आनंद नहीं हो सकते। जैसे आप बोलते हो ना, आज मैं घर पे अकेला हूँ, मजा करूंगा, तो मजा करने के लिए आपको क्या चाहिए? टीवी चाहिए, है ना, और सीडीज होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और वाईफाई होना चाहिए। ये सब अगर आप बिल्कुल अकेले हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी रसायन, कोई भी चीज आपके पास नहीं है, ना लाइट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना टीवी है, ना कंप्यूटर, ना कुछ, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, है ना, आपके पास शास्त्र भी नहीं है, तो बगैर किसी चीज के आप कभी भी, मतलब आप संतुष्ट नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। आपको आनंद लेने के लिए किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान जो है वो सच्चित आनंदमय है। भगवान स्वयं में आनंदित होते हैं, स्वयं ही से आनंद प्रकट करते हैं और अपने आप में आनंदित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी वस्तु, क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य है। भगवान का शरीर हमारी तरह हाड़ मास का बना हुआ नहीं है, जिसको भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता हो, है ना। भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता हमारे इस शरीर के कारण होती है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य होता है, तो भले वो कोई भी स्वरूप यदि ले लेते हैं तो भी वो उनकी दिव्यता समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर एक कोई प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान का शरीर दिव्य होता है, कोई भी शरीर यदि वो लेते हैं तो दिव्य होते, फिर देखा गया कि जब युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगवान, जैसे सब लोग अर्जुन को निशाना बना देते, लेकिन जब यदि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर कभी कोई तीर लगता था तो वहां से भी ब्लड निकलता था ना, हम देखते भी हैं टीवी में भी, इस तरह शास्त्र में भी बताया जाता है, तो वो क्यों निकलता था? अब भगवान का शरीर जब दिव्य है, वो हाड़ मास का बना हुआ नहीं है, उसमें ये रक्त इत्यादि हमारी भौतिक शरीर की तरह नहीं है, फिर उनके शरीर से ब्लड क्यों निकलता था? तो इसका कारण ये है, बताते हैं महात्मा जन, कि ये इसलिए क्योंकि भगवान ऐसी लीला करते हैं, ये भगवान की इच्छा से होता है, भगवान लीला करते हैं, भगवान चाहे तो ऐसा नहीं है कि हाड़ मास के शरीर से ही ब्लड निकाल सकते। अब भगवान क्या करते हैं, हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, ठीक है, अनाज में ब्लड नहीं होता है, लेकिन जब वो हम अपने खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड बनकर हमारी रगों में दौड़ता है, हाँ? ये भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूतवा, कि वैश्वानर अग्नि जो है वो उनके जीवों के भीतर में बैठा हूँ, और पचाम अहम अन्न चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, यानी उसको डाइजेस्ट करके फिर ब्लड में परिवर्तित कर देते। तो भगवान जो अनाज को ब्लड में चेंज कर सकते हैं, तो क्या अपने शरीर में से ब्लड निकलता हुआ नहीं दिखा सकते? भगवान लीला के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, जो भी भगवान चाहते हैं वो करते हैं अपनी लीला के अनुसार। उनका मेन पर्पस होता है अपने भक्तों को आनंदित करना। तो पृथ्वी जब रसातल में चली गई तो बहुत बहुत क्रंदन कर रही थी कि भगवान आप है ना आकर रक्षा कीजिए, और प्लस भगवान के सारे भक्त भी रसातल में थे, तो भगवान उनको निकालने के लिए कहां से प्रकट हुए? उनकी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी की नासिका से इतना छोटा, जैसे राई का दाना नहीं होता है, छोटा सा राई का दाना, उतना ब्रह्मा जी की नासिका से निकला, और देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि हम तस्वीर नहीं कर सकते। अब पृथ्वी कितनी बड़ी है, अब पृथ्वी उनको उठानी है, उसके लिए तो उनको कितना बड़ा वपू चाहिए होगा। बहुत बड़े हो गए, बहुत ज्यादा बड़े हो गए। और फिर उसके बाद वो रसातल के अंदर गए, ठीक है। अब रसातल के अंदर तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छुपाया था, वो इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देगा। तो रसातल के अंदर ही युद्ध स्टार्ट हुआ, किसका? वराह और हिरण्याक्ष का। भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि सब जितनी दिशाएं हैं, सारे देवता वो सब मतलब परेशान हो गए थे कि कैसा भयंकर युद्ध। इतनी देर तक भगवान है ना हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई कर रहे थे, और कभी उसको ऊपर फेंकते थे, कभी कैसे फेंकते थे। फिर क्या करा? अच्छा, उस समय क्या हुआ, जामवंत जो रामायण में जामवंत है ना, वो अचानक से उसने देखा कि वराह भगवान और हिरण्याक्ष की लड़ाई हो रही है। अब इन दोनों को देखकर वो इतना खुश हो रहे थे, क्योंकि अब जामवंत जो है वो ऐसे जैसे नित्य होते हैं ना, जो सदैव भगवान की लीलाओं के लिए कंटिन्यूस होते हैं संसार में, और वो भगवान की लीला जहाँ जहाँ होती है उनको दर्शन करना चाहते, तो भगवान उनको ऐसा, जो परम भक्त होते हैं ना, तो भगवान उनको ऐसा वरदान देते हैं, जैसे हनुमान जी को वरदान दिया कि जहां पर भी कथा होगी वहां पर आप जाओगे, वहां पर आप उपस्थित होगे। तो जामवंत को भी यही कहा कि जब जब मैं लीला करूंगा तो आप ना मेरी लीला के दर्शन करोगे। जैसे कृष्ण लीला में भी जामवंत आते हैं ना, जब जामवंती के साथ उनका उनका विवाह होता है, रामलीला में भी होते हैं। तो वराह लीला में भी जामवंत जी देख रहे थे कि वराह भगवान कैसे उस राक्षस को मार रहे, तो भगवान को बार बार इतना खुश हो रहे थे भगवान की लड़ाई को देखकर। उस समय वो बहुत बहुत यंग थे, क्योंकि अभी भगवान का पहला अवतार है, फर्स्ट अवतार में। ऐसे याद है जब है ना हनुमान जी को समुद्र लांगने के लिए कहा जा रहा था, तो मतलब पहले सबको बोला ना कि आप जाओ आप जाओ, तो जामन जी ने कहा कि मैं अब भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ना, लेकिन जब मैं पहले जवान होता था तो ये समुद्र तो कुछ भी नहीं है, मैं तो फटाफट इसको कर सकता, लेकिन अभी मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो बोला अच्छा, पहले जब आप जवान थे तो आपने कौन सा शक्ति वाला काम किया? फिर वो बताते हैं कि मैं जब वराह भगवान हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई कर रहे थे ना, तो उस समय मैंने उसके 7 चक्कर लगाए थे। अब आप खुद सोच सकते हो कि वो इतने बड़े वराह भगवान जो पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को एक छोटे से दाने की तरह अपने दांत में रख देते हैं, मक्के का दाना जैसे होता है ना, उसके तरह अपने दांत के ऊपर रख देते, तो वो स्वयं कितने बड़े होंगे। तो उस वराह भगवान के 7 चक्कर परिक्रमा की थी उन्होंने, और उस समय वो वराह भगवान क्या कर रहे थे? वो हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई कर रहे थे, और साथ साथ में परिक्रमा करते हुए वो क्या कर रहे थे, जामवंत जी उनको इनकरेज कर रहे थे, ऐसे अपनी जंगा पर पीस के बोली ऐसे ऐसे, हाँ वाह 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 भगवान क्या, ऐसे क्लैप करते थे और बोलते थे क्या आपने मारा, मजा आ गया, और वहां पे मारो, वहां पे ये ऐसे मारो, ऐसे करो, ऐसे, मतलब वो देख के, जैसे हम कभी देखते हैं किसी की लड़ाई, फिर जैसे बच्चे बोलते ऐसे करो ऐसे करो, तो ऐसे ऐसे बता, और बार बार भगवान को बोल रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, वाह। जैसे हम बोलते ना, जैसे दो बच्चों की लड़ाई हो रही होती है या ऐसे खेल रहे होते हैं, फिर हम किस अंग्रेन करेंगे, ऋषि 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 ऐसे बोलते ना, तो वो भी जामन भी ना भगवान को इनकरेज कर रहे थे, बार बार बोलते हाँ वाह वाह ऐसे करो ऐसे करो। तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ, वराह भगवान ने उसकी आंख निकाल दी, ऐसे गोल गोल, अभी वो हिरण्याक्ष भी बहुत बड़ा खतरनाक राक्षस था, तो इतनी मोटी मोटी उसकी गोल गोल आंख निकल आई पूरी। फिर क्या किया, दूसरी आंख भी उसकी निकाल दी। फिर आंखों के साथ है ना उसको ऐसे ऐसे करके मारने लगे, कभी गेंद की तरह कभी क्या, तो इतना मजा आ रहा था और है ना उनको लड़ाई करने में मजा आ रहा था और जामन जी को देखने में मजा आ रहा था। बहुत ही सुंदर युद्ध हुआ और अंततः भगवान ने वराह रूप में अपने दांतों को हिरण्याक्ष के पेट में घुसाकर उसका वध कर दिया और पृथ्वी को फिर से क्या किया, यहाँ पर क्या लिखा है, रसातल गता महीम और उद्धरिष्यन्न। उद्धरिष्यन्न का मतलब होता है उठाकर, उपादयत स्थापित कर दिया, फिर से स्थापित कर दिया वहां से उठाकर। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 4.9 में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता। तो भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। अब हम क्योंकि भौतिक धरातल पर हैं तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ नहीं सकते पूरी तरह से, लेकिन इतना तो जान सकते हैं ना कि इतना तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतनी श्रद्धा तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि भगवान चाहे कोई भी स्वरूप लेते हैं, भगवान चाहे कोई भी कार्य करते, भगवान पर ऐसे नहीं करना भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं, अच्छा भगवान ने ऐसा किया, ऐसे भगवान ने सूकर का रूप भी धारण कर लिया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भगवान ऐसे भी करते हैं। लेकिन भगवान जो भी करें उन पर इन कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कर्मों का प्रभाव क्यों पड़ता है जब हम फल की इच्छा रखते हैं। भगवान बताते 4.14 में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्प्रह इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सद्यते। अर्थात मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मैं कर्म की कामना करता हूँ, कर्म फल की कामना करता हूँ, क्योंकि कर्म फल की कामना ही नहीं है तो कर्म का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ये कैसे होता है जानते हो, भगवान कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। एक बार क्या हुआ कि गोपियां सब, उनको पता चला यमुना जी के उस पार दुर्वासा मुनि आए हैं और दुर्वासा मुनि क्या उनकी क्या आदत थी कि वो श्राप दे देते जल्दी, तो आपको क्योंकि मुनि आए हैं तो उनका आदर सत्कार करना सब ब्रजवासियों का कर्तव्य बनता था, तो उन्होंने बहुत बहुत भोजन बनाया ताकि हम दुर्वासा मुनि को जाके खिलाएं। अब इतना दूर से मुनि क्योंकि यात्राएं करते 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 अब यमुना के उस तरफ आ गए हैं, तो ब्रजवासियों का कर्तव्य था ना, तो बहुत सारा भोजन उनके लिए और उनके शिष्यों के लिए बनाया, तो बोला अभी हम इनको खिलाते हैं ताकि ये कम से कम हमको श्राप ना दे। तो वो जा रही थी उनको प्रसाद खिलाने के लिए, तो रास्ते में यमुना इतनी तेज हो गई, कभी कभी यमुना में बहुत तेज पानी आ जाता है, तो इतनी तेज हो गई, तो कृष्ण को वो अभी सोचा कि इतनी तेज है तो फिर हम जाएंगे कहाँ से, अब क्योंकि ब्रजवासियों के संकट तो भगवान ही दूर करते हैं, हर समय भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। तो वो गई गोपियां, वहां से कृष्ण आए तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण सहायता करो ना, हमें यमुना पार करना है, कोई तरीका बताओ। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो, अगर मेरी सहायता चाहती हो तो जो मैं बोलूंगा वैसे करना, ठीक है। तो बोला हाँ करेंगे, आप बताओ। तो बोले तुम यमुना को बोलो कि ये जो कृष्ण है ना यशोदा का बेटा, वो अगर निष्ठीक ब्रह्मचर्य है, यानी कभी सपने में भी किसी स्त्री का चिंतन नहीं किया उसने, बिल्कुल प्योर ब्रह्मचर्य है यदि वो, तो फिर हमें रास्ता दे दो। तो गोपी हंसने लगी, सारा दिन तो हमारे आगे पीछे फेरता रहता है, हमें छेड़ता रहता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है, तो ऐसे हम कैसे कह दे कहना आप निश्चित ब्रह्मचारी हो। तो फिर कृष्ण ने बोला देखो तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हो, बस फिर मैं आपकी हेल्प भी नहीं करता हूँ, मैं आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हो तो फिर मैं कैसे सहायता करूँ। तो फिर गोपियों ने, गोपियों को पता था कि कृष्ण निश्चित ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि देख रहे उसकी करतूत क्या है, लेकिन फिर भी गोपियों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कि ठीक है अभी जब हम ऐसे कहेंगे कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हो तो रास्ता तो नहीं मिलेगा, फिर भगवान की पूगी भगवान का ऐसे मजाक होगा ना, तो फिर ना ऐसे वो दिल से प्रार्थना करें, ये यमुना महारानी यदि ये यशोदा और नंद का पुत्र कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, यदि सपने में भी इसने किसी स्त्री का चिंतन नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दो। इसके कि जब उन्होंने नेत्र खोले तो पता है क्या हुआ, यमुना जी दो भागों में बट गई, बीच से पूरा सड़क की तरह रास्ता मिल गया और उसको देखकर गोपियां तो हैरान हो गई और कृष्ण की ओर देख रही हैं, फिर यमुना की ओर देख रहे हैं, तो कृष्ण बोला जाओ आप रास्ता मिल गया यहाँ पर क्यों खड़ी हो, वरना दुर्वासा मुनि है ना आप तो कुछ श्राप दे देगा अगर देर से प्रसाद लेकर गई, तो फिर जल्दी से गई और फिर जब गई तो फिर वापस से यमुना मिल गई आपस में और दुर्वासा मुनि को प्रसाद खिलाया, और खिलाने के बाद जब वापस जा रही थी तो देखा अरे अब तो वापस से है ना यमुना जी बात मतलब मिक्स हो गई, अभी हम जाएं कैसे, तो उनको चिंतित देखकर दुर्वासा मुनि ने पूछा क्या हुआ क्यों परेशान हो, तो बोला कि अब हम जाना चाहते हैं लेकिन यमुना से गुजरने का रास्ता कैसे जाए, तो दुर्वासा मुनि ने बोला चलो ऐसा करो कि तुम यमुना महारानी से प्रार्थना करो कि दुर्वासा मुनि ने हमारे दिए हुए भोजन का एक कण भी नहीं खाया है, यदि तो आप हमें मतलब रास्ता दे दो, यमुना महारानी से ये प्रार्थना करो कि दुर्वासा मुनि ने एक कण भी नहीं खाया तो फिर हमें रास्ता दे दो। तो गोपियां वापस से दुर्वासा मुनि की शक्ल में देख रही हैं कि इतना सारा हम लेकर आए थे सारा हजम कर गए और बोल रहे एक कण भी नहीं खाया एक दाना भी नहीं खाया, तो फिर है ना बोला बोलो चुप करके खड़ी हो तुम बोल के देखो, तो यमुना जी को ऐसे बोला कि हम जितना भी प्रसाद लेकर आए थे हे यमुना महारानी यदि उसका एक दाना भी दुर्वासा मुनि ने नहीं चखा है तो फिर हमें रास्ता दे दो। इतना कहते ही यमुना महारानी फिर दो हिस्सों में बदल गए मतलब परिवर्तित हो गए, फिर वो ऐसे देख कर हैरान हो गई कि आज यमुना महारानी को हो क्या गया है, जो भी हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि देखा था उन्होंने कृष्ण की करतूत भी और दुर्वासा का खाता हुआ अनाज भी, फिर भी ये यमुना महारानी जो है वो रास्ता देखती। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4.14 में नमाम कर्मणि लिम्पन्ति कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें लिप्त नहीं होता हूँ, यानी कि मैं कार्य कर रहा हूँ केवल उसका एक ही उद्देश्य होता है भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। अब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होता है तो मैं उसमें कभी भी लिप्त नहीं होता हूँ, उसके भोग उसको मुझे भोगना थोड़ी पड़ेगा, मैं तो ईश्वर हूँ यज्ञेश हूँ, मैं समस्त यज्ञों और सर्व भोक्ताराम यज्ञ तपस्वाम जो भी तपस्या कर रहे हैं जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसका भोगने वाला तो मैं हूँ, तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ आनंद होने की आनंद लेने के लिए तो वो तो वैसे भी मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन मैं जो दूसरा कार्य जो कर रहा हूँ दिखता हूँ कुछ कार्य करते हुए आनंद लेने वाला तो मैं हूँ, लेकिन कार्य करते हुए दिखता हूँ तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करता हूँ, इसलिए मैं लिप्त नहीं होता हूँ। और नमे कर्म फलेष्ठा इसका किसने बताया, दुर्वासा मुनि ने, कि जो कार्य आप कर रहे हो लेकिन यदि आपका उद्देश्य यज्ञेश्वर को प्रसन्न करना है, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके उद्देश्य में आप यज्ञेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो तो उस कर्म का भी आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा, है ना, यानी कि आपने खाया लेकिन फिर भी नहीं खाया, क्यों, क्योंकि आप केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हो। तो भगवान के भक्त और भगवान कर्मों के बंधन में नहीं फंसते, इसलिए भगवान कहते हैं इतिमाम यो भी जानाति कर्म भी न बध्यते, तो इतिमाम यानी जो इस प्रकार से मुझे जानता है जो मेरे संबंध में इस सत्य को समझता है वह भी कर्मों के फल की आशा के पास में नहीं बंधता। तो भले ही भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कोई भी अवतार लेते हैं वो सदैव दिव्य रहते हैं और दिव्य शरीर उनका शरीर भी एकदम दिव्य होता है पूज्य होता है, इसलिए इस विराह भगवान की स्तुति करते हुए जयदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर दशावतार के प्रार्थना में लिखते हैं, वे कहते हैं वसति दशन शिखर धरणी तवलग्ना शशनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधीरिता सुकररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न, यानी वसति यानी वास करती है कहाँ पर? दशन आपके दांतों पर, दांतों की शिखर, शिखर माना जो आपके दांतों का टॉप हिस्सा है ना, शिखर ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर धरणी, धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो समस्त जीव भूत को अपने ऊपर धारण करती है वो आपके दांत के ऊपर वास कर रही है आज। और तव लग्न कैसा लग रहा है उसको देखकर मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। शशि ने कलंक कलेवनी, यानी शशि कहते हैं चंद्रमा को, कलंक मतलब चंद्रमा के अंदर एक दाग होता है ना, धब्बा ऐसे, और कलेवनी यानी कि जब आपका ये जो कलेवर है सुंदर स्वरूप है, सुकर रूप में जब आप प्रकट हुए हो ना, तो उसके ऐसा वो इतना सुंदर है, आपका स्वरूप जो सुअर के रूप में मैं देख रहा हूँ, यानी कि सुकर अवतार, ये केशवद्रता सुकर रूपा, तो सुकर के रूप में आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो जैसे चंद्रमा, जैसे चंद्रमा कैसे चमक रहा होता है और शीतलता प्रदान करता है, तो आपका स्वरूप भी इतना ही सुंदर दिख रहा है और इतनी ही शीतलता प्रदान कर रहा है। और पृथ्वी कैसी लग रही है आपके साथ टच होकर, ऐसा लग रहा है चंद्रमा के ऊपर जो दाग होता है ना, ऐसा लग रहा है, मतलब भक्तों को भगवान का हर स्वरूप उतना ही प्रिय लगता है। भगवान चाहे किसी भी अवतार में आते, कोई भी अवतार में लीला करते हैं, तो भगवान की उन लीलाओं को सुनकर भक्त बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और उनको देखकर भी, जैसे हमारा कोई बच्चा हो अगर उसको किसी भी मतलब एक्टर के लिए, प्लेयर के लिए, उसको कभी उसको शेर बनना पड़े, कभी गिद्ध बनना पड़े, कोई दूसरा कोई भी एनिमल बनना पड़े, तो हम उसको देखकर कितना खुश होते हैं, उनकी फोटोज निकालते हैं, फिर उसको प्यार करते हैं कि तुम कितने अच्छे लग रहे थे, तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की, बहुत मजा आया तुमको देखकर। हालांकि वो वास्तव में वो उसका बेटा है, लेकिन वो जो रोल कर रहा है उस रोल के कारण उसको और भी ज्यादा उस पर प्यार आता है। तो इसी तरह से वास्तव में हमारा कृष्ण, हमारा प्रियतम वास्तविक स्वरूप कृष्ण रूप में है, लेकिन जब भी वो कोई भी एक्ट करता है, कोई भी लीला करता है, तो भक्तजन भगवान को और भी ज्यादा प्रेम करते हैं कि आप कितने इस ये लीला आपने कितने अच्छे तरीके से निभाई, आप कितने सुंदर लग रहे थे, और आपके समक्ष यदि कोई भी आ जाता है तो आप भले कोई भी एक्टर, अभी देखो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें हमारा बच्चा ही अच्छा लग रहा होता है, भले हीरो कोई और हो, भले साइड कैरेक्टर हो, लेकिन हमारी नजर उधर ही जाती है, लेकिन भगवान तो सदैव हीरो ही होते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदैव भगवान को फोकस कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आप चाहे कुछ भी बन के आते हो और कैसे भी करते हो, कभी कभी भगवान भक्तों ऐसी लीला करते कि वो हार जाते हैं, जैसे भगवान है ना जब जरासंध से लड़ाई करने जाते थे तो हार जाते थे, मतलब हार जाते थे, मतलब जरासंध चला जाता था और भगवान जो है वो उसको नहीं, उसी तरह से मुच्छकंद वो नहीं था काल्यवन, वो उस भगवान भाग रहे थे, मतलब भाग रहे हैं भगवान, रणछोड़ बन रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त ये नहीं सोचते कि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, वो कुछ भी बन रहे होते हैं, कोई भी लीला कर रहे होते हैं, तो भक्तों को सदैव आनंदित करते हैं। तो आज हमने भगवान के द्वितीय अवतार के विषय में पढ़ा, जो क्या है, द्वितीयम तु भवायस्य रसातल गतामहिं उद्धरिष्यन्न पादश्च यज्ञेशः सौकरं वपु, के दूसरा रूप जो है वो धरती को रसातल से उठाने के लिए आपने सोकर का यानी सुकर का अवतार लिया था, अब पहला कौन सा था? कल हमने संत कुमार जो चार कुमार है उनके विषय में पढ़ा, और आज सोकर रूप के विषय में पढ़ा, वराह अवतार के विषय में, और कल से हम आगे भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिए, आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।